ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कोरोना वायरस संक्रमण के 1120 नए मामले आए सामने। संक्रमण के कारण आज 12 लोगों की हुई मौत। मरने वालों की कुल संख्या 2251। काठमांडू घाटी में जारी निषेधाज्ञा की अवधि को भाद्र 24 गति तक के लिए बढ़ाने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। कुछ सेवाओं में दी गई है छूट। सीमा विवाद के विषय में भारत के गंभीर होने की आवश्यकता पर परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गवाली ने दिया जोर। और चाइनीज ऐप्स के खिलाफ एक बार फिर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकप्रिय गेम पबजी समेत कुल 118 चाइनीज ऐप्स पर लगा दिया बैन। अब समाचार विस्तार से। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गवाली ने कहा, सीमा विवाद को लेकर भारत को गंभीर होना होगा। बीबीसी हिंदी के साथ अंतर्वार्ता के दौरान परराष्ट्र मंत्री गिवाली ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं, इसलिए इस विषय में भारत को गंभीर होना चाहिए। अपनी अंतर्वार्ता में उन्होंने ये भी बताया कि सीमा विवाद संबंधी नेपाल की ओर से सचिव स्तरीय वार्ता के लिए प्रस्ताव किया जा चुका है, लेकिन अब तक भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। काठमांडू घाटी में निषेधाज्ञा की अवधि को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय के परामर्श पर घाटी के काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर जिलों के प्रमुख जिलाधिकारियों की बैठक ने कुछ सेवाओं में कुछ सहजता देते हुए भाद्र 24 की रात 12 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। ये जानकारी ललितपुर जिले के प्रमुख जिलाधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट ने दी। उनके मुताबिक दवा पानी जैसे व्यवसायिक 24 घंटे करने और दूध, सब्जी, फल फूल लगायत अन्य खाद्य सामग्रियों का व्यवसाय सुबह 11 बजे तक संचालन करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दुकान, व्यवसाय और ढुवाने के लिए संचालित होने वाले छोटी दूरी के वाहनों को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति देने के साथ ही पीसीआर निगेटिव होने वाले लोगों के द्वारा टेक अवे, ऑनलाइन सेवा, क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रहने वालों के लिए खाना बनाने वाले कैटरिंग व होटल, विमानस्थल से क्वारंटीन व आइसोलेशन तक जाने वाले वाहनों को संचालन की छूट इस निषेधाज्ञा अवधि में दी गई है। अत्यावश्यक काम के लिए काठमांडू आने वाले लोगों के लिए उनकी पीसीआर रिपोर्ट का निगेटिव होना अनिवार्य है। साथ ही आज के निर्णय में अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित उद्योग, कल कारखाना संचालन की अनुमति भी दी गई है। काठमांडू घाटी में 388 समेत आज देश भर में कोरोना के 1120 नए मामले सामने आए हैं। इसमें 800 पुरुष और 320 महिलाएं शामिल हैं। इसे मिलाकर देश भर में अब तक कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 41,649 हो गई है। इनमें से आज 1112 समेत अब तक 23,290 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल देश भर में सक्रिय संक्रमितों की तादाद 18,108 है। वहीं आज कोरोना पॉजिटिव 12 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर कोरोना संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या 251 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ. जागेश्वर गौतम ने दी। इसके साथ ही मंत्रालय ने आवश्यक धार्मिक कार्य करने के लिए प्रविधि का उपयोग करने का आग्रह किया है। हालांकि प्राध्यापक डॉ. गौतम ने भौतिक उपस्थिति जरूरी होने की सूरत में सुरक्षा मापदंड का पालन करने का भी आग्रह किया है। प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने कोविड-19 संक्रमण न्यूनीकरण और रोकथाम के मद्देनजर समुदाय में रहे सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मियों, जन स्वास्थ्यविदों, विभिन्न सामाजिक कार्यों में संलग्न संघ संस्थाओं को भी परिचालित करने की प्रभावकारी योजना के तहत काम करने का सुझाव दिया है। समिति की आज हुई वर्चुअल बैठक ने संक्रमितों के समय पर ही परीक्षण, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उनकी निगरानी, लगायत बातों पर गंभीर होने का सरकार को सुझाव दिया है। साथ ही समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि संक्रमितों को डिस्चार्ज करने से पहले पीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट जरूर देख ली जाए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा, तीनों तहों की सरकारों को मिलकर कोरोना पर रोकथाम व नियंत्रण के काम को और प्रभावकारी बनाना होगा। प्रदेश सरकारों के सामाजिक विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में मंत्री ढकाल ने कोरोना को लेकर मौजूदा परिस्थिति में तीनों तहों की सरकारों को समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15 बजारमा नयाँ कि थाइन। नेपाल टेलिकम का विभिन्न सेवा का अफरहरू सस्तो साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने कहा कि किसी भी तह के शैक्षिक सत्र को बर्बाद न होने देने के हिसाब से कार्यतालिका बनाई जाएगी। आज वर्चुअल अंतर्क्रिया में मंत्री पोखरेल ने कहा कि COVID-19 के कारण अभी पढ़ाई संचालन नहीं किया जा सका है, लेकिन पाठ्य वस्तु कम कर पूर्व निर्धारित समयावधि के अंदर शैक्षिक सत्र पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक शिक्षण के लिए सरकारी अंतर्गत एक अलग डेडिकेटेड शैक्षिक टेलीविजन संचालन करने की तैयारी की जा रही है। COVID-19 का संक्रमण समुदाय स्तर पर फैला है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए सरकार जल्द ही अध्ययन शुरू करेगी। COVID-19 का संक्रमण उन लोगों में भी दिखा है जिनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, और ये अब समुदाय के सभी लोगों में दिखने लगा है। इसलिए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की एपिडेमियोलॉजी तथा संक्रामक रोग नियंत्रण महाशाखा संक्रमण के स्तर पर अध्ययन करेगी। इस अध्ययन के लिए एलाइजा विधि से एंटीबॉडी का परीक्षण कर समुदाय स्तर पर फैला है या नहीं ये पता लगा जाएगा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई ने 25 अगस्त के दिन यूएई की शारजाह से काठमांडू आए यात्रियों के पैसे लौटाने का निर्देश किया है। नियमित उड़ान के किराए की रकम और चार्टर उड़ान संबंधी दर्ज शिकायत पर आज मंत्रालय में हुई बैठक में पर्यटन मंत्री भट्टराई ने एयर अरेबिया को रकम लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नियमित उड़ानों का किराया महंगा होने की शिकायत पर वायु सेवा निगम का द्वारा तय दर की ही पालना करने का आग्रह किया है। मौके पर मंत्री भट्टराई ने विदेशी एयरलाइंस की फ्लाइट की उड़ानों को भी अनुमति देने का निर्देश नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सिंधुपालचोक में भाद्र 1 गते से जारी लॉकडाउन की अवधि को भाद्र 24 गते तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज हुई जिला COVID-19 की संकट व्यवस्थापन समिति की बैठक ने ये निर्णय किया है। ये जानकारी प्रमुख जिलाधिकारी उमेश कुमार ठकाल ने दी। इसी तरह जुमला की खलंगा बाजार को आज से पूर्ण रूप में सील कर दिया गया है। जिले में एक ही दिन 39 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद आज हुई संकट व्यवस्थापन समिति ने बाजार को सील करने का निर्णय लिया है। ये जानकारी प्रमुख जिलाधिकारी भूपेंद्र थापा ने दी। हिंदू परंपरा अनुसार आज से पितृपक्ष अर्थात 16 श्राद्ध शुरू हुआ है। धार्मिक ग्रंथ अनुसार आज अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष के दिन पितरों को श्रद्धा के साथ अन्न जल अर्पण किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। चाइनीज ऐप्स के खिलाफ एक बार फिर से भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकप्रिय गेम पबजी समेत कुल 118 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत में चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, बल्कि इससे पहले सरकार ने 15 जून को 57 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके बाद 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं चाइनीज ऐप्स को भारत में तीसरी बार बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सरकार ने केवल मोबाइल ऐप्स ही नहीं बल्कि इंटरनेट ऐप्स को भी बैन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि इन ऐप्स की ओर से इकट्ठे किए गए डाटा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें बैन करने का फैसला किया गया है। मद्देनजर इन्हें बैन करने का फैसला किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंसर और होम मिनिस्ट्री की ओर से भी इन ऐप्स पर बैन लगाने की मांग की जा चुकी है। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,60,05,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,82,66,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 8,63,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका में 62,66,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,89,000 से अधिक लोग मर चुके हैं। वहीं ब्राजील में 39,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,22,000 से अधिक है। जबकि भारत में 38,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 67,000 से अधिक हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। कोरोना वायरस के संक्रमण के 1,120 नए मामले आए सामने। संक्रमण के कारण आज 12 लोगों की हुई मौत। मरने वालों की कुल संख्या हुई 251। काठमांडू घाटी में जारी निषेधाज्ञा की अवधि को भाद्र 24 घंटे तक के लिए बढ़ाने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। कुछ सेवाओं में दी गई है छूट। सीमा विवाद के विषय में भारत के गंभीर होने की आवश्यकता पर परराष्ट्र मंत्री प्रदीप तिवारी ने दिया जोर। और चाइनीज ऐप्स के खिलाफ एक बार फिर से भारत सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लोकप्रिय गेम पबजी समेत कुल 118 चाइनीज ऐप्स पर लगा दिया बैन। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आज्ञा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।